बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्रिका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं आज का ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम अपने अध्ययन में कुछ नई बातों को सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी होगा। इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए जो आप हमें प्रतिदिन हमारे जीवन में देते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं हमारे हृदयों में कार्य करने पाए। विशेष प्रार्थना उन मित्रों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, अशांति में हैं। दयालु प्रभु, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। आज का अध्ययन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीषमय बनाइए। बड़े धन्यवाद के साथ विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पौलुस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह पेश कर रहा है और पत्रस तथा अन्य 10 शिष्य इसके पश्चात गलील में एक विशाल जनसमूह में पाए जाते हैं। आज हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 7 पद से लेकर के 34 पद तक। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा हुआ है, फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए, फिर वह याकूब को दिखाई दिया, यह भी संभवतः व्यक्तिगत साक्षात्कार है। वह फिर शिष्यों को भी दिखाई दिया, सबके बाद वह पौलुस को दिखाई दिया। मेरे मित्रों, जिसने यीशु को देखा है उससे विवाद करना व्यर्थ है। तो आइए अब हम आगे पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। मेरे मित्रों, पौलुस स्वयं को प्रेरित में सबसे छोटा कहता है। यहाँ पर शिष्टाचार प्रदर्शन कर रहा है। प्रेरणा से सिद्ध होता है कि वह दिल से कह रहा था कि वह एक छोटा शिष्य है। मेरे मन से यह आवाज उठती है, पौलुस तू महान है, मैं तुझे प्रेरितों में सबसे छोटा नहीं मानता हूँ। परंतु पौलुस कहता है कि वह तो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि उसने कलीसिया को सताया था। वह अपने आप को पापियों में सबसे बड़ा पापी मानता था, तथापि वह प्रेरितों में सबसे अधिक परिश्रमी था। परंतु वह स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह ही के द्वारा उसने जो किया वह किया। मेरे मित्रों, हम पहला कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया है। मित्रों, ध्यान दीजिए, मैं ऐसे विश्वासियों से ऊब गया हूं जो विश्वासी होने का दावा करते हैं परंतु सुसमाचार के तथ्यों को स्वीकार नहीं करते। मसीह यीशु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान को अस्वीकार करके आप विश्वासी नहीं बन जाते। आप चाहें तो इन तथ्यों का इनकार कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है, परंतु आपको मसीह कहलाने का अधिकार नहीं होगा। लिखा है कि जब कुरिन्थ वासियों ने सुसमाचार सुना तो विश्वास किया और वे मसीही कहलाए। मेरे मित्रों, यह इतना अधिक गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषय है कि हम इस पर बल देने के लिए इसका पुनरालोकन करेंगे कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार मसीह के मरने, गाड़े जाने और फिर जी उठने का शुभ संदेश है। वह न तो विलोप हुआ, न ही छिप गया, वह पुनः जी उठा। जी हाँ, उसकी कब्र खाली है। मसीह यीशु आज जीवित है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। सुसमाचार एक विचार, एक धारणा, एक धर्म नहीं है। ध्यान दीजिए, सुसमाचार तथ्यों का संग्रह है। पौलुस ने इसी सुसमाचार का प्रचार किया था। यह पौलुस का अपना अनुभव नहीं था, यह एक तथ्य एवं सत्य है। मेरे प्रियो, पद एक में लिखा है कि कुरिन्थ के विश्वासियों ने सुसमाचार को ग्रहण किया और उसमें विश्वास किया। पद 11, मसीह को ग्रहण करने का अर्थ क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसके 11 से 13 पद में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मसीह को ग्रहण करने का अर्थ है उसके नाम में विश्वास करना। पहला पद कुरिन्थ के विश्वासियों के बारे में प्रकट करता है कि उन्होंने सुसमाचार को अंगीकार किया और उसमें स्थिर भी थे। यह उनकी वर्तमान स्थिति थी। वे जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवंत विश्वास में निर्वाह कर रहे थे। आज आपकी स्थिति क्या है? दूसरे पद में वह कहता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। मित्रों, केवल बौद्धिक ज्ञान के द्वारा सुसमाचार से उद्धार नहीं है, यह तथ्यों को सिर हिलाकर स्वीकार करने से नहीं होता है, यह उसके बारे में है जिसकी सुसमाचार गवाही देता है। उद्धारकर्ता मसीह यीशु है। जब आप सुसमाचार के तथ्यों को स्वीकार करते हैं, जब आप मसीह यीशु में परिशुद्ध विश्वास करते हैं, तब आपका उद्धार होता है। स्पर्जन ने इसके बारे में कहा, यह आपका मसीह में आनंद नहीं है जो आपका उद्धार करता है, यह मसीह में आपकी आशा नहीं जो आपका उद्धार करती है, यह मसीह है, यह मसीह में आपका विश्वास भी नहीं, जबकि वह एक साधन है। यह मसीह का लहू और अच्छाई है जो आपका उद्धार करती है। कुरिन्थ में सुसमाचार प्रचार किया गया था। पौलुस ने कहा, तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। आगे वह कहता है, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। यदि उनका विश्वास तथ्यों पर आधारित नहीं तो वह विश्वास निष्प्रभाव है, अर्थात व्यर्थ है। उनका मन परिवर्तन सच्चा नहीं है। विश्वास अपने आप में गुण रहित है। मुख्य बात है आपके विश्वास का कर्ता, जिसमें आप विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसे उद्धारकर्ता में विश्वास करते हैं जो मर गया, दफन किया गया और मृतकों में से फिर से जी उठा? हमने पुराने नियम के धर्म ग्रंथों अर्थात धर्म शास्त्र के गवाहों की चर्चा की थी कि वे पुनरुत्थान के प्रमाण हैं। कुछ गवाह पौलुस के युग में जीवित थे। इस पत्र के लिखने समय वे भी जीवित थे। कैफा, बारहों और 500 भक्त, याकूब, सब प्रेरित और अंत में वह स्वयं, सब ने पुनर्जीवित मसीह को देखा था। अपने बारे में वह कहता है, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा है। वह उस शेष समूह का प्रतीक है जो इस संसार से कलीसिया के उठाए जाने के बाद उद्धार पाएगा। मेरे मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आइए हम आगे देखेंगे। पहला कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? मेरे मित्रों, कुछ विश्वासी जो एपिकुरियन, स्टोइक, प्लेटो के विचारों की पृष्ठभूमि से थे, वे यीशु के पुनरुत्थान का इनकार करते थे। वस्तुतः वे मसीह के पुनरुत्थान को ही नहीं, पुनरुत्थान ही को नहीं मानते थे। अब पौलुस कहता है, यदि, अर्थात तर्क की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यदि मसीह नहीं जी उठा, पौलुस ने तथ्यों का सामना किया। मेरे प्रियो, सुतुर्ग मुर्ग की नाई अपना सिर रेत में छिपाकर यह नहीं कहना कि हम पुनरुत्थान के बारे में निश्चित नहीं, अतः इस विषय में अधिक बातें ना करें। हम ऐसी चाल चलें जैसे अंडों के छिलकों पर चलना होता है। मेरे मित्रों, मैं तो चट्टान पर खड़ा हूं और वह चट्टान मसीह है। वह मृतकों में से जी उठा है। पौलुस को कदापि संदेह नहीं कि मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा। उसके द्वारा यदि काम में लेने का अर्थ है कि मसीह के पुनरुत्थान के महत्व को प्रकट करे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। ध्यान दीजिए, यदि मृतकों में से जी उठना नहीं तो मसीह का पुनरुत्थान भी संभव नहीं। पौलुस आगे चलकर कहेगा कि मसीह पुनरुत्थान के द्वारा ही प्रथम फल है। इसका अर्थ है अभी बहुत कुछ होना है। अभी वह पहला फल है और उसके आने पर उसके विश्वासियों का पुनरुत्थान होगा। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। मेरे मित्रों, संभव है कि आपकी कलीसिया मसीह के पुनरुत्थान का इनकार करती है। यदि मसीह का सदैव पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। यही नहीं, हमारा विश्वास भी व्यर्थ है और हम मूर्ख हैं। उचित होगा कि आप कलीसिया की सहभागिता से दूर हो जाएं। वह किसी काम की नहीं है। यदि मसीह का मृतकों में से जी उठना नहीं हुआ है तब तो आराधना करना और उपदेश सुनना भी व्यर्थ है। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। यहां पर ध्यान दीजिए, यदि मसीह फिर जी नहीं उठा होता तो प्रेरित सब झूठे ठहरते। यदि मसीह कब्र में ही होता तो प्रत्येक गवाह झूठा गवाह होता। क्या आपने कभी सोचा है कि झूठ के लिए कोई अपनी जान गंवाएगा? क्या यह संभव है कि झूठ को सच मानकर कोई अपनी जान की आहुति दे? जैसे हिटलर के लिए अनेकों ने अपने प्राण गंवाए क्योंकि वे उसमें विश्वास करने लगे थे। प्रेरितों ने गवाही दी कि उन्होंने फिर जी उठे मसीह को देखा है और अपने इस गवाह के लिए वे जान देने के लिए भी तैयार थे। मेरे प्रियो, मैं निर्णय आपके हाथों में छोड़ देता हूं कि उनके सच या झूठ का निर्धारण करें, परंतु यह तो सच है कि मनुष्य झूठी बात के लिए अपनी जान कभी नहीं देगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 16 और 17 पद में आगे लिखा है, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। ध्यान दीजिए, यदि मसीह यीशु फिर मुर्दों में से नहीं जी उठा तो मेरे मित्रों, आप भटक चुके हैं और नरक के मार्ग पर हैं, और यही आपकी नियति है। यदि मसीह यीशु मृतकों में से फिर जी नहीं उठा है तो हम में से हर एक पापों में पड़ा है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। करोड़ों विश्वासी मसीह में विश्वास करके कि वह उनका उद्धार करता है अपने प्राणों की आहुति चढ़ा चुके हैं। यदि मसीह यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो उनमें से हर एक नाश हो चुका है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय के 19 पद में आगे लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मेरे मित्रों, क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि मेरे विचार में मसीही विश्वास यीशु मसीह के जी उठने पर ही आधारित है? पौलुस इसे स्पष्ट करता है रोमियों की पत्री अध्याय 6 में, परंतु मसीही विश्वास मरणोपरांत का धर्म भी है। यदि मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हम भ्रम में हैं, और आज इस संसार में हम सबसे अधिक अभागे मनुष्य हैं, परंतु हमारे साथ नहीं है। मेरे प्रियो, हम तो आनंद से भरे हुए हैं। अब पौलुस के यदि तर्कों का अंत यहां पर होता है। क्या आप उसके द्वारा सुझाई गई सभ्यताओं का सामना करेंगे? पौलुस द्वारा कहे गए यदि को तर्क के साथ देखें तो आप पाएंगे कि मसीह के पुनरुत्थान के बिना मानव जाति, मनुष्य जाति भटकी हुई है और आशा से ही रहित है। मित्रों, हम आगे देखते हैं पुनरुत्थान का प्रदर्शन। मैं पौलुस की घोषणा में उसके साथ होना चाहता हूं कि मसीह मृतकों में से जी उठा है, तो आइए देखें पहला कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय उसके 20 पद में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। मसीह पहला फल है। पुराने नियम में पहले फल का पर्व मनाया जाता था जिसमें वे फसह की पहली बालें या उपज प्रभु को चढ़ाते थे। पहले फल का अर्थ है और भी फल उत्पन्न होंगे, अन्यथा वह पहला फल नहीं है। इसकी पूर्ति मसीह यीशु के पुनरुत्थान में होती है। वह महिमामय देह के साथ मृतकों में से जी उठा और अब तक एकमात्र वही है जिसका महिमामय देह में पुनरुत्थान हुआ है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 21 और 22 पद में आगे लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मेरे मित्रों, पहले फल के पर्व के बाद पेंतिकोस्त का पर्व आता था जो 50 दिन बाद मनाया जाता था। इसकी पूर्ति कलीसिया के उद्भव के साथ नए नियम के युग में हुई, परंतु इसकी अंतिम पूर्ति उस समय होगी जब मसीह अपने विश्वासियों को लेने आएगा और उनका पुनरुत्थान होगा। जी हाँ, वे सब मसीह से भेंट करने के लिए हवा में उठाए जाएंगे। वही वास्तविक पेंतिकोस्त का पर्व होगा। मेरे एक पेंतिकोस्तल भाई ने मुझसे कहा, भाई क्या आप जानते हैं कि मैं पेंतिकोस्त की प्रतीक्षा में हूँ? मेरा प्रत्युत्तर सुनकर वह चौंक गया, मैं भी पेंतिकोस्त की प्रतीक्षा में हूँ। उसने कहा, ओह आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा, मेरे कहने का अर्थ वह नहीं जो आपका है। आपका मानना है कि आप पेंतिकोस्त का पर्व यही मनाएंगे, परंतु जिस पेंतिकोस्त की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ वह यीशु का आगमन है, जब वह अपनी कलीसिया को इस संसार से उठाने आएगा। जी हाँ, मसीह पहला फल है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। ध्यान दें, यह कैसी अद्भुत बात है। मसीह मृतकों में से जी उठा और मृतकों में से जी उठने का वह पहला फल हुआ। एक मनुष्य अर्थात आदम द्वारा मृत्यु आई, मनुष्य के द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान आया। आदम में सबकी मृत्यु होती है। आदम के परिवार का सदस्य होने का प्रमाण है कि आप एक दिन मरेंगे यदि मसीह आपको उठाने ना आए। इसी प्रकार मसीह में सब जीवित होते हैं। यीशु पुनरुत्थान और जीवन है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। ध्यान दीजिए, पुनरुत्थान का एक दिन नहीं होगा। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि धर्म सुधारकों ने बाइबल के बहुत से तथ्यों की खोज की, परंतु सबकी नहीं। आज के युग में अंतिम समय के संबंध में बहुत सी बातें बाइबल अध्ययन में हो रही हैं, अर्थात अंतिम समय से संबंधित भविष्यवाणियों का महान तथ्यों की खोज के इस समय में भ्रमित विचार भी बहुतायत से पाए जाते हैं। भविष्यवाणी के संबंध में भ्रम की शिक्षाओं की कमी नहीं है, जिसका कारण है धर्मशास्त्र परिपूर्णता के ज्ञान में कमी। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन तब तक नहीं करवाना चाहिए जब तक कि बाइबल की अन्य पुस्तकों का अध्ययन पूरा न किया जाए। जी हाँ, भविष्यवाणियां महत्वपूर्ण है, परंतु वही एकमात्र आधार नहीं है। धर्म के महान सुधारकों ने बाइबल के अधिकांश तथ्यों को खोजा था, परंतु वे बाइबल की इस शिक्षा से चूक गए थे कि हर एक अपने अपने बारे में जी उठेगा, अर्थात सबका पुनरुत्थान एक ही दिन नहीं होगा। मसीह पहला फल है, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। वह क्यों आएगा? वह अपने कलीसिया के लिए आएगा। मेरे मित्रों, वह आपको लेने के लिए आएगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 24 पद में लिखा है, इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। ध्यान दें, इसके बाद अंत होगा। किसका अंत? वर्तमान युग का अंत। वर्तमान युग का अंत कैसे होगा? महाक्लेश आरंभ होगा और उसके बाद इस पृथ्वी पर प्रभु का हजार वर्षीय राज्य स्थापित होगा। शैतान कुछ समय के लिए स्वतंत्र किया जाएगा और फिर सदा के लिए अग्नि कुंड में डाल दिया जाएगा। प्रभु यीशु सदा के लिए अपना राज्य स्थापित करेगा। यह अनंत राज्य होगा। मेरे प्रियो, जो सहस्त्र वर्षीय राज्य का विस्तृत परिदृश्य है, सहवर्षीय राज्य परीक्षाओं का समय होगा। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। यह कब होगा? सहस्त्र वर्षीय राज्य के अंत में। मसीह यीशु सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत कर देगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 25 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। जी हाँ, यह शैतान है। तब आगे देखें, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 26 पद में, सबसे अंतिम वैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, उससे मुक्ति पाकर मैं प्रसन्न होऊंगा। पहला कुरिन्थियों 15 के 27 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। जी हाँ, प्रभु यीशु परमेश्वर के अधीन नहीं है। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 28 पद में पढ़ते हैं, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। जी हाँ, अर्थात जब मसीह का सहस्त्र वर्ष का राज्य पृथ्वी पर पूरा होगा और अनंत राज्य का उदय होगा, मेरे विचार में वह दाऊद को उसका सांसारिक राज्य लौटा देगा। तब वह अपने ईश्वरत्व में लौट जाएगा, जहां वह आदि में था, कि परमेश्वर सर्वे सर्वा होगा। मित्रों, हम देखेंगे पुनरुत्थान की योजना एवं नमूना अर्थात प्रारूप। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 29 पद में लिखा है, नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? वे क्या करेंगे अर्थात वे क्या उपलब्ध करेंगे? हम बपतिस्मा का मूल अर्थ देख चुके हैं, किसी के साथ एक रूप होना या एकता बनाना। यहाँ पौलुस के कहने का अर्थ है मृतक से एकता बनाना। वह कहता है जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? तो फिर वे मृतकों के स्वरूप क्यों हो? इसका अभिप्राय यह नहीं कि कुरिन्थ के विश्वासी उनके मृतक मित्रों एवं संबंधियों का बपतिस्मा ले रहे थे। इसका अर्थ है कि वे मसीह की पहचान में थे जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। वे संसार के लिए मर गए थे परंतु मसीह में जीवित थे। मित्रों, हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 30 और 31 पद में पढ़ते हैं, और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। पौलुस कहता है कि यदि मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा तो वे अपने जीवन को संकट में डालकर मूर्खता का काम कर रहे हैं, परंतु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है, इसलिए विश्वासी अपने साथ पहचान बनाते हैं। पौलुस ने रोम के विश्वासियों से कहा, जिसे हम रोमियों के पत्री 6 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम पुनः जीवित मसीह की पहचान में हैं। पौलुस कहता है कि यदि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो मैंने जो बलिदान दिए हैं वे मूर्खता के काम है। मेरा जीवन हर घंटे खतरों में पड़ा रहा है, मुझ पर मृत्यु का संकट मंडराता रहा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 32 पद में लिखा है, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसूस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। पौलुस पूछता है, मैं वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे? जी हाँ, मैं मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ले चुका हूँ, उसकी मृत्यु में अपनी पहचान बना चुका हूँ, मैं मृतक सा जाना जाता हूँ क्योंकि मैं जीवित मसीह से जुड़ गया हूँ। मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में एक होना एक महान तथ्य है। मेरे मित्रों, हम इसे पानी के बपतिस्मे के तुल्य न बना दे, अन्यथा यह अर्थहीन हो जाएगा। यदि मसीह फिर जी नहीं उठा और मृतक भी जी नहीं उठेंगे तो हम एपिकुरियन के विचार अपना लें जो कहता है आओ खाए पिए क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 33 और 34 पद में लिखा हुआ है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। मेरे मित्रों, कुरिन्थ के विश्वासी पुनरुत्थान पर संदेह करने वालों द्वारा भ्रम में डाल दिए गए थे। वे उन विद्वानों की बातों को मानने लगे थे जिनमें सांसारिक ज्ञान तो बहुत था परंतु परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। पौलुस कहता है कि जानकारी सही न हो तो आचरण भी गलत हो जाता है। पौलुस उन्हें आदेश देता है कि वे पाप से बचें क्योंकि उन्हें एक दिन मरकर जी उठना है। मेरे मित्रों, पौलुस ने उन लोगों से कहा और उन्होंने विश्वास किया क्योंकि उन्हें मालूम हो गया कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। आज प्रश्न यह है कि क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वह मृतकों में से जी उठा है? उसने आपके सारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया है, वह मर गया है, गाड़ा गया है और मृतकों में से जी उठा है ताकि आप उसके साथ जीवित रहें, अनंत काल के लिए जीवित रहें। शारीरिक मृत्यु है जो आदम के द्वारा आया, परंतु अनंत जीवन भी है जो मसीह यीशु में है जो मृतकों में से जी उठा। क्या आज आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के राज्य के सदस्य बने, उसके बेटे और बेटियां बन जाएं? आज आप यदि उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आज विश्वास करें। उससे कहें, प्रभु मैं भी आपके जी उठने पर विश्वास करता हूं, करती हूं, आप मेरी सहायता करें। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप एक सही निर्णय लेंगे और परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा आप भी उसके राज्य के वारिस बन जाएंगे। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग